ओम शांति। हम सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी। हम सभी उनका एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भ्राता जी 1972 से इस ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन मनन चिंतन कर रहे हैं। आपने 1973 में नागपुर यूनिवर्सिटी से MSc गॉड बैडलिस्ट किया हुआ है। 1976 से आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विश्वव्यापी सेवाओं के लिए समर्पित हैं। आप राजयोग पर गहन शोध स्वयं के जीवन में और अनेक आत्माओं के जीवन में कराते रहे हैं। आपने भारत वर्ष के सभी प्रांतों के जिलों में जाकर सघन योग भट्टियों के कुशल आयोजन कराए हैं। आप रेडियो, दूरदर्शन इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर राजयोग से संबंधित, सकारात्मक सोच से संबंधित विषयों पर इंटरव्यू दे चुके हैं। आपने मानवता के कल्याण के लिए विश्व के पांचों महाद्वीपों में अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं एशिया के 90 देशों में भ्रमण करके ईश्वरीय संदेश तथा राजयोग की शिक्षाएं देकर अनेक आत्माओं को लाभ पहुंचाया है। आप राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के युवा प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। ऐसे प्रखर गहन ज्ञान योग के पराकाष्ठा प्राप्त भ्राता जी तीनों ही स्थानों पर मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन तीनों ही स्थानों पर टोली, जिसे हम ब्राह्मण बड़े प्यार से बाबा का कैप्सूल, बाबा का वरदान समझकर प्राप्त करते हैं, उन तीनों ही डिपार्टमेंट, तीनों ही स्थानों के टोली डिपार्टमेंट को आप संभालते हैं। ऐसे निर्माणचित, ऐसे मधुर गहन तपस्वी राजयोगी भ्राता जी से हम विनम्र निवेदन करेंगे कि ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण फरिश्ता स्थिति हम ब्राह्मण आत्माएं अपनी बना सके, उस पर हमें आदरणीय भ्राता जी प्रकाश देने कुंशन।
देवताओं के रूप में गायन पूजन किया जाता है, यह उस फरिश्ता स्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम बाबा के बच्चों ने ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हर कल्प किए हैं और ऐसी फरिश्ता स्थिति के द्वारा मानवता की सल्वेशन आर्मी बनकर सेवा की है। उसकी यादगार आज तक भी पाई जाती है। फरिश्ता जो शब्द है उसका जब हम उच्चारण करते हैं फरिश्ता, तो न चाहते भी दिव्यता के भाव हमारे मानस पटल पर उभरने लगते हैं। तो फरिश्ता शब्द पांच शब्दों से बना हुआ है। अगर हम उसका संधि निग्रह करते हैं तो उसमें पांच शब्द अंतर्निहित हैं। फ र ई श ता फरिश्ता, उसकी पांच विशेषताएं होती हैं। फ अर्थात जो फर्श से हमेशा परे रहता है, अर्शवासी बनकर रहता है, उसके सारे रिश्ते अर्शवासी परमात्मा के साथ होते हैं। र अर्थात इसमें बहुत रॉयल्टी होती है, इसलिए कहावत प्रसिद्ध है चाल हमारी फरिश्तों की हो और हाल हमारा खुशहाल हो। ई अर्थात ईमानदार, ऑनेस्ट, दुनिया में अगर कोई किसी को ठगता है तो कहते हैं ये बेईमानी करता है। अगर हम स्वयं को आत्मा की जगह देह समझते हैं तो हम स्वयं को ठगते हैं। तो स्वयं से ईमानदार, ईश्वरीय परिवार से ईमानदार और यज्ञ से ईमानदार। फर ईश अर्थात शक्तियों के खजाने से संपन्न रहने वाला, क्योंकि सारे संसार की आत्माओं को शक्तियों की आवश्यकता है। तो फरिश्ता शक्तियों का खजाना बांटता रहता है, मनुष्यात्माओं को सहयोग शक्तियों का देता रहता है। और त अर्थात हमेशा तत्पर रहने वाला, एवर रेडी रहने वाला। त अर्थात अपनी जीवन रूपी नैया के साथ अनेक आत्माओं की जीवन रूपी नैया को तारने लग वाला, अर्थात पार लगाने वाला। तो जब ये पांच विशेषताएं हमारे जीवन में हम धारण करते जाते हैं तो फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हमें स्वतः ही होती जाती है। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ स्थिति, ऊंची स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें दिल से पांच बातों पर अभ्यास करना जरूरी है। ये गारंटी है इन पांच बातों पर आप अभ्यास करेंगे तो आपकी परिस्थिति स्थिति दिन प्रतिदिन निखरती जाएगी। पहली बात, ऐसी परिस्थिति स्थिति की अनुभूति करने के लिए फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म वतन हमारे बुद्धि के सामने सदा इमर्ज रहे हैं। न केवल इमर्ज रहे हैं, लेकिन वहां जाकर हमें उस वतन का अनुभव करना है और उस वतन पर अपना अधिकार भी जमाना है। मैंने गुलजार दादी जी का 91 में इंटरव्यू लिया था, क्योंकि गुलजार दादी जी को सबसे पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार हुआ था। मैं दादी जी के पास गया और दादी जी को पूछा कि आखिर भी वो फरिश्तों की दुनिया कैसी है, वो स्पष्ट कीजिए, क्योंकि मैं आर्टिकल लिखने जा रहा था। वो आर्टिकल 91 के जनवरी मास के मैगजीन में छपा हुआ है। हृदय को मोहित करने वाली दादी हृदय मोहिनी थी इस टाइटल के अंतर्गत। तो दादी जी ने बताया था कि ये जो पांच तत्वों की साकारी दुनिया है, इस दुनिया के ऊपर एक ऐसी निराली दुनिया है जहां हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश छाया रहता है। स्नो व्हाइट ब्राइट डिवाइन लाइट हमेशा रहता है। और फरिश्तों की जो भाषा होती है वो नैनों के इशारे की और होठों के मोमेंट्स की होती है। और वहां की जो कारोबार चलती है वो संकल्पों के माध्यम से चलती है। अगर बाबा को संदेशी बहन या भाई को कोई दर्श दिखाना होता है तो बाबा संकल्प शक्ति से उसको सेकंड में इमर्ज करते हैं और उसका साक्षात्कार उसकी अनुभूति उसको कराते हैं। मजे की बात ये है, जिस ब्राह्मण बच्चे का जब से अलौकिक जन्म होता है तब से उसका संपूर्ण परिसर स्वरूप सूक्ष्म वतन में सदा रहता है। तालियां बजाकर अच्छी तरह से जब चाहे जिस बच्चे का संपूर्ण स्वरूप बाबा देखना चाहे सेकंड में देखते हैं। एक बार क्या हुआ, जब ब्रह्मा बाबा यहां थे मधुबन में, उन दिनों की बात है, संदेशी बहन सूक्ष्म वतन में गई तो वहां उसने लाइट का ब्रह्मा बाबा देखा। वो चौंक गई, ब्रह्मा बाबा तो मधुबन में है, ये कहां से दूसरे ब्रह्मा बाबा आ गए। उन्हीं से आई ब्रह्मा बाबा को बताया कि आपके जैसा लाइट का बाबा वहां मैंने देखा। बाबा के भी समझ में नहीं आवे, बाबा ने उसको दूसरी बार भेजा, तीसरी बार भेजा, फिर भी उसका राज स्पष्ट नहीं हो रहा था। फिर शिव बाबा ने बताया कि ये है पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा और वो है संपूर्ण ब्रह्मा बाबा। जब ये पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने उसके बाद एक ही ब्रह्मा बाबा सदा वतन में रहते हैं। तो ऐसे ये हमारा पुरुषार्थी स्वरूप है और हमारा संपूर्ण परिस्थिति स्वरूप बाबा के पास है। हमें उस जैसा बनना है, इसलिए सूक्ष्म वतन में हमें बार बार जाना है और उस घर पर हमारा अधिकार बढ़ाना है। हमारा वर्तमान समय घर कौन सा है? हाँ जी, कौन सा है बोलो? टाइटल लेके घूमते हैं सारे समय, ब्रह्मा कुमारी फलानी, ब्रह्मा कुमार फलाना। तो ब्रह्मा के बच्चे हो गए, जहाँ मेरा बाप रहता है वो मेरा घर कहलाता है। इसलिए वर्तमान समय हमारा घर है सूक्ष्म वतन। दूसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए इस शरीर रूपी मकान में आत्मा की लाइट सदा जलती रहे, क्योंकि फरिश्ता अर्थात सूक्ष्म प्रकाश पुंजधारी ये स्थूल शरीर है, हड्डी मांस का फरिश्ते को लाइट का शरीर होता है। तो लाइट का शरीर अनुभव करने के लिए इस शरीर रूपी हाउस में आत्मा की लाइट निरंतर जलती रहे। हम उस लाइट को जलाने का प्रयास करते हैं और माया उसको बुझाने का प्रयास करती है। हम उसको जगाने का प्रयास करते हैं, माया उसको बुझाने का प्रयास करती है। एक स्लोगन सदा याद रखना, जहां होगा अंधेरा वहां होगा भूतों का डेरा। अगर इस घर में लाइट नहीं होगी, अंधेरा होगा, तो पांच विकार रूप भूत जो हैं इस घर में निवास करने आएंगे। भूतेश्वर बाबा ने इस घर में लाइट आत्मा की जला दी और सारे भूत भागे। तालियां तो बजाओ जरा। चलिए हम बाबा के पास। जिनके घर में सदा रोशनी रहती है, वही बाबा के बच्चे बाबा का नाम रोशन करेंगे। इसलिए इस आत्मा की ज्योत को निरंतर जगाकर रखने के लिए उसमें अटेंशन का और ज्ञान का गुरुत्व डालते रहें, जिससे केवल ये ज्योति प्रखर जलती ही न रहे लेकिन इस ज्योति का प्रकाश दूर दूर तक पहुंचता रहे। आत्मा का प्रकाश दूर दूर तक फैलता रहे। तो इस अभ्यास को जब हम बढ़ाते हैं तो ये हाउस लाइट हाउस अनुभव होता है। और जैसे जैसे हम इस अभ्यास को जारी रखते हैं, सूक्ष्म रीति से बढ़ाते रहते हैं, तो ये हाउस माइट हाउस अनुभव होने लगता है। फरिश्ता अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति अनुभव करने वाला। एक बार की बात है, प्रकाश मणि दादी जी अपना अनुभव सुना रही थी, ब्रह्मा बाबा दादी जी को अपने हाथ में हाथ लेकर मधुबन की सैर करा रहे थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का चक्कर लगा रहे थे। तो दादी जी ने बताया कि बाबा का हाथ स्थूल हाथ नहीं लग रहा था, लेकिन बाबा का हाथ लाइट का हाथ या रुई का हाथ लग रहा था। ऐसा क्यों दादी ने अनुभव किया? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के देह रूपी मकान में आत्मा की लाइट निरंतर जलती रहती थी, इसलिए ऐसा लाइट हाउस अनुभव होता था। तो हमें भी इस पर विशेष ध्यान देना है। आप देखेंगे मंदिरों में देवी देवताओं के सामने अखंड ज्योत जलाते हैं, दीपक की ज्योत निरंतर जलती रखते हैं, पुजारी नींद भी फिटाते हैं। अगर ये ज्योत बुझ जाए तो देवताओं का मुझे श्राप मिलेगा। किसकी यादगार है ये? हमारी यादगार है। हम सभी जो होनहार देवताएं हैं, उन्होंने संगम युग में इस शरीर रूपी मंदिर में आत्मा की ज्योत निरंतर जगाने का प्रयास पुरुषार्थ किया था, उसकी याद आज तक भी लोग मना रहे हैं। तालियां तो बजाओ जरा। वो पुजारी नींद पिटा रहा है और हम मस्ती से खराटे मारते हैं, कोई बात नहीं। तो इसलिए ज्योति आत्मा की निरंतर जलती रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। तीसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए स्वयं को हमेशा डबल लाइट अनुभव करते रहना जरूरी है। एक मैं आत्मा लाइट हूँ और दूसरा लाइट अर्थात मैं सदा हल्का हूँ, क्योंकि हल्की चीज ही हमेशा ऊपर की ओर जाने लगती है। फरिश्तों के पैर कभी भी धरती से टच किए हुए नहीं दिखाते हैं, हमेशा धरती से ऊपर उठाए दिखाते हैं, क्योंकि फरिश्ते हमेशा उड़ते रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा डबल लाइट रहते हैं। तो सदा लाइट रहने के लिए हमें कुछ एक बातों पर अभ्यास करते रहना जरूरी है। एक बात हमें ध्यान रखना है, संगम युग में लाइट रहना, हल्के रहना, ये बहुत ही श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। हल्की अर्थात है लकी, क्यों? क्योंकि हल्की आत्मा हमेशा ऊपर बाबा के पास जाकर बैठती हैं और बाबा से खजाने लूटती रहती हैं और अपने भाग्य का सितारा चमकाती रहती हैं, इसलिए लकी कहलाती है। तो संगम युग में स्वयं को सदा हल्के अनुभव करना है, लाइट अनुभव करना है। बाबा द्वापर युग से देख रहे थे ऊपर से कि मेरे बच्चे बहुत बोझ उठा रहे हैं और बोझ झील अनुभव कर रहे हैं, तो बाबा सोच रहे थे मैं जब संगम युग में धरती पर जाऊंगा तो मेरे बच्चों को सदा मैं लाइट रखूंगा, हल्का रखूंगा। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे बोझ दे दो। बाबा कहते हैं जिम्मेदारी का बोझ मुझे दे दो, मैं आया ही हूँ आपको लाइट रखने के लिए। हम बाबा को बोझ तो दे देते हैं और पुनः वापस ले लेते हैं, क्यों भाई? थोड़ा सा संशय आता है कि पता नहीं मेरा काम बाबा पूरा करेंगे या नहीं, पता नहीं मुझे बाबा पूरी मदद करेंगे या नहीं। इस संशय से हम वो जिम्मेदारी का बोझ पुनः वापस ले लेते हैं और स्वयं को बोझिल अनुभव करते हैं। एक बार गया वहां ओम शांति भवन में, बाबा ने मुरली चलाई, 1200 विदेशी भाई बहने सभा में बैठे थे, विदेश से आने वाले भाई बहने। तो मुरली के बाद बाबा ने कहा किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो। तो एक विदेशी भाई खड़ा होकर प्रश्न पूछने लगा, बाबा विदेश में हमें बहुत सेवा करनी पड़ती है, लौकिक जिम्मेदारी और बाबा के सेवा की जिम्मेदारी, दोनों जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है और घोड़े की तरफ भागना पड़ता है, थक जाते हैं, और अमृत वेले जब उठकर बैठते हैं तो क्या होता है, माया को नमस्कार करते रहते हैं, सैल्यूट माया, नमस्ते माया, नमस्ते माया, माया को सैल्यूट मारते रहते हैं। ये द्वापर युग से हमारी आदत हो चुकी है माया को नमस्कार करने की, तो अभी भी वो शुरू रखते हैं। तो बाबा मुस्कराए, अच्छा, तो बाबा ने कहा इस संसार में सबसे बिजिएस्ट व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा बाप है, उनसे बढ़कर कोई बिजी नहीं है। सबसे बिजी रहकर, सबसे इजी रहकर नंबर वन कर्म योगी श्यामपल बने बाबा, वो आपका बाप है, किसी और का नहीं, वो आपका बाप है। अगर आपका बाप ऐसी श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त कर सकता है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो जब उसने सुना तो लंबी सांस ली, हो तो सकता है। तो हमारे सामने रोल मॉडल हैं ब्रह्मा बाबा, हमें केवल जिम्मेदारी का बोझ बाबा के कंधे पर रखना है। मैंने एक बार प्रकाश मणि दादी जी का इंटरव्यू लिया, क्योंकि दादी जी के साथ 30 वर्षों तक रहने का मुझे मधुबन में चांस मिला। तो मैं दादी जी को देखता था और उनके जीवन से बहुत बातें मैं सीखता था। एक बार प्रश्न पूछा दादी जी को, दादी जी आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी यज्ञ की जिम्मेदारी लेकर चल रही हैं, 5-7 हजार सेवा केंद्र चल रहे हैं, लेकिन मैंने आपके चेहरे पर कभी भी टेंशन नहीं देखा, बोझ का चिन्ह नहीं देखा, आपका चेहरा हमेशा छोटे बच्चे की तरह एवर स्माइलिंग फेस रहता है, एवर चीयरफुल फेस रहता है, इसका क्या कोई राज है मुझे बताइए। तो दादी जी ने बताया था, देखो आत्म भैया, सबसे पहले मैं निमित्त समझती हूँ, मैं केवल कठपुतली हूँ, मेरी बुद्धि रूपी रस्सी बाबा के हाथ में है, वो मेरे से सेवा कराते हैं, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं केवल कठपुतली हूँ, निमित्त हूँ। और दूसरा, मेरे एक कंधे पर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में रहते हैं और दूसरे कंधे पर शिव बाबा रहते हैं, दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्सेस मेरे साथ रहते हैं, और कोई भी समस्या आती है उनकी मदद से चुटकी से पार हो जाती है। इसलिए मैं सदा लाइट रहती हूँ। सदा लाइट रहने के लिए एक पाठ हमें पक्का करना है। बाबा ने एक बार कहा था, इस यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स होंगे, स्कॉलर्स होंगे, उनके जीवन में एक पाठ बहुत नेचुरल होगा, नथिंग न्यू का लेसन बहुत नेचुरल होगा। हम इस हॉल में अभी बैठे हैं, पहली बार बैठे हैं, ऐसे ही अनगिनत बार बैठे हैं और बैठते ही रहेंगे, बाबा के पास आते ही रहेंगे। कितनी खुशी की बात है, कलप कलप भगवान हमें ढूंढ कर अपनी गोदी में बिठाएंगे, कितना बड़ा भाग्य हमारा है। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भगवान मेरा बाप बन चुका है। जितना चाहे मैं खजाने लूट सकता हूँ और लुटा सकता हूँ। करोड़ों आत्माओं को बाबा ने अनदेखा किया और आपको देखा, करोड़ों को अनदेखा किया और आपको देखा, कितने भाग्यशाली है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा है, आप इस बेहद के ड्रामा के हीरो एक्टर है, हीरोइन एक्टर है, कितने महान आत्मा है। एक बार हंसी हंसी में सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा का डायलॉग चल रहा था, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कह रहे थे कि ब्रह्मा बाबा, मुझे आपके बच्चों पर कभी कभी हंसी आती है, मैं उनको बहुत ऊंची नजर से देखता हूँ, लेकिन पता नहीं वो अपने को क्यों नीची नजर से देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे हंसी आती है। तो बाबा हमें बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हम अपने को नीचा क्यों देखते हैं? क्योंकि हम द्वापर युग से माया के जेल में गुलाम बनकर रहे हैं, उसके कारण हीन भावना आत्मा में कूट कूट कर भरी पड़ी है, वो हीन भावना हमारे से जल्दी निकलती नहीं, इसलिए स्वयं को थोड़ा कभी दीन और हीन समझते हैं। लेकिन हमें बहुत अपने को ऊंचा समझना है, रॉयल समझना है, और भगवान के डायरेक्ट एडॉप्टेड बच्चे समझना है। शेर का बच्चा शेर होता है, सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिवान होते हैं, साधारण नहीं होते हैं। तो नथिंग न्यू का पाठ हमें पक्का करना है। चौथी बात, ऐसी परिस्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए कोई भी रस रूपी रस्सी मोज आत्मा को बंधी न हो। कोई भी बंधन मुझ आत्मा को न बांधे, क्योंकि आजाद पंछी ही उड़ता पंछी बनता है। इस देह रूपी पिंजरे में मैं आत्मा रूपी जो पंछी फंसा हुआ हूँ, उस पिंजरे से भी मुझे आजाद होना है, इस देह के भान को भी मुझे भुलाना है। तुम देखते हैं सारे दिन भर में हमें दो प्रकार के बंधन बांधने का प्रयास करते हैं, व्यक्ति के तरफ आकर्षण होना और वस्तु के तरफ आकर्षण होना। ये दो प्रकार की रस्सियां बार बार हमें बांधने का प्रयास करती हैं। भगवान के पालना हमें मिल रही हैं, हमें कोई भी बांध नहीं सकता है। अगर किसी व्यक्ति के तरफ हमारा आकर्षण होता है, कोई संबंध हमें बार बार अपने तरफ खींचता है, तो वो विशेष संबंध हमें बाबा के साथ अनुभव करना है। क्योंकि हमारा 84 जन्मों का अनेक आत्माओं के साथ हिसाब किताब है, न चाहते हुए किसी के तरफ आकर्षण होना ये स्वाभाविक है। हमें चेक करना है, ऐसा कोई स्थान तो नहीं है, ऐसी कोई व्यक्ति तो नहीं है जहां मेरी बुद्धि बार बार जाती है, उसको हमें चेक करना है और वहां से बुद्धि को हटाने का पुरुषार्थ करना है और बाबा के साथ वो संबंध विशेष अनुभव करके बुद्धि को बाबा के साथ जुटाना है। आत्माओं के साथ, संबंधियों के साथ थोड़ा लगाव होना संभव है, कोई बात नहीं। बच्चों के साथ, पति के साथ, माँ के साथ थोड़ा सा लगाव होना ये नेचुरल है, लेकिन संगम युग में हमें बाबा ने बहुत अच्छा गोल्डन जान दिया है। बाबा कहते हैं मैं 24 घंटे आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूँ, यूज मी आर यू कैन लूज मी, दैट इज अप टू यू। यूज करो, मैं 24 घंटे आपको कंपनी की देने के लिए तैयार हूँ। और ये चांस हमें केवल संगम युग में एक ही बार मिलता है, इसलिए हमें बाबा को खूब यूज करना है और बाबा की कंपनी को खूब अच्छी तरह से एंजॉय करना है, अनुभव करना है। रिश्ता अर्थात अर्शवासियों से कोई रिश्ता नहीं, सारे रिश्ते अर्शवासी परमात्मा के साथ उसके होते हैं। इसलिए हमें सूक्ष्म वतन में शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के तन में अनुभव करना है परिस्थान स्वरूप में, और स्वयं को भी मुझ आत्मा ने भी परिस्थान स्वरूप धारण किया है और बाबा के साथ वो विशेष संबंध अनुभव करते जाना है। और ये जो लौकिक संबंध है वहां से बुद्धि को हटाना है और बाप से जुटाना है। भगवान के साथ सर्व संबंध अनुभव करना बहुत जरूरी है। इसके पीछे क्या राज है बताइए। भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते रहना बहुत जरूरी है, एक भी संबंध हमने मिस नहीं करना है। क्या जरूरी है भाई, हमारा लक्ष्य 100% प्यार बाबा के तरफ ट्रांसफर करना, चाहे एक संबंध के द्वारा भी कर सकते हैं, चाहे अनेक संबंध के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन सर्व संबंधों की अनुभूति बाबा के साथ करना बहुत जरूरी है। उसके पीछे गुह्य राज ये है, क्योंकि सारे कल्प में हमें विभिन्न रोल विभिन्न पार्ट बजाते रहना है, आधे मेल के और आधे फीमेल के हमारे रोल होते हैं, ये बाबा ने बताया है। लेकिन 84 जन्मों में अलग अलग रोल हमें बजाने होंगे, वो रोल बजाने का संस्कार आत्मा में अभी भरना है घर वापस जाने के पहले। और कैसे भरेंगे? भगवान के साथ संबंधों की अनुभूति करते हुए। ठीक है, दूसरी वस्तु के तरफ आकर्षण होना, ये रस्सी भी हमें बांधने का प्रयास करती है। बाबा कहते हैं कितनी भी बढ़िया वस्तु हो, वैभव हो, वो तो वैभव विनाशी है, अल्पकालीन है, क्षणभंगुर है। और कितनी भी अच्छी चीज हो, बाबा ने कहा है वो सतयुग में नहीं जाने वाली है। तो इन क्षणभंगुर अल्पकालीन चीजों से क्या मोह लगाए? एक बात बुद्धि में रखना है कि मुझे यहाँ से घर वापस जाना है। ये अभ्यास अगर हम करते रहते हैं तो किसी भी वस्तु के साथ हमारा लगाव झुकाव नहीं होता है। मुझे यहाँ से जाना है। 5000 वर्षों का पाठ हमने बहुत अच्छी तरह से इस रंगमंच पर बजाया है, अभी घर वापस जाने का समय है। तो वस्तु से भी डिटैच और व्यक्ति से भी डिटैच और स्वयं को स्वतंत्र पंछी अनुभव करते हैं और ऊंची उड़ती कला की अनुभूति हमारी बढ़ती जाती है। पांचवी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए हमें अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप अपने सामने इमर्ज करना है और उसके साथ ये पुरुषार्थ स्वरूप की तुलना करते रहना है, भेद करते रहना है और उसके जैसा बनने का पूरा पुरुषार्थ करते जाना है। वो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप कैसा है? उसका आकार, ये जो स्थूल शरीर है ऐसा ही उसका आकार है, अंतर इतना ही है, ये हड्डी मांस का है और ये लाइट का स्वरूप होता है। दूसरी बात, तीन बातों से वो संपन्न होता है, ईश्वरीय नशे से संपन्न, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न और ईश्वरीय गुणों से वो संपन्न होता है। और बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी उस फरिश्ते ने धारण किया होता है और निरंतर बुद्धि की तार एक बाबा के साथ, भगवान के साथ जुटी रहती है। ऐसा फरिश्ता स्वरूप हमें अपने सामने इमर्ज करना है और मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मुझे से हैंड करना चाहता है, मैं इंतजार कर रहा है। तो उसके लिए हमें उसके साथ तुलना करना है, बैठ से रहना है और उन्होंने जो रॉयल संस्कार हैं, जो खजाने हैं, उन खजानों को अपने में आह्वान करना है और उनके जैसा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। इन पांच बातों पर अभ्यास करते करते कुछ बातें हमें कर्म क्षेत्र पर रहकर अभ्यास में लानी है। जैसे कि मैं कर्म योगी फरिश्ता हूँ, कर्म करने के लिए फरिश्तों की दुनिया से इस धरती पर अवतरित हो चुका हूँ कर्म करने के लिए, और जब कर्म पूरा करते हैं पुनः अपने घर वापस चले। तो मैं कर्म योगी फरिश्ता हूँ और दिव्यता का प्रकाश निरंतर इस वायुमंडल में फैलाता रहता हूँ, ये गुप्त ही गुप्त अभ्यास करते रहे। दूसरी युक्ति, ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण फरिश्ता स्थिति के अंग संग हम स्वयं को अनुभव करें, बाबा के साथ ऐसा अनुभव करें कि बाबा मेरे बाजू में हैं और बाबा मुझे देख रहे हैं, केवल देख ही नहीं रहे लेकिन मुझे सकाज भी दे रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में कंपनी को बहुत एंजॉय करना है, उनसे सूक्ष्म मदद लेना है। और तीसरी युक्ति, ऐसा फरिश्ता स्वरूप हमें निखारते रहना है, उसके लिए अमृत वेले योगाभ्यास के बाद 4 से 5 योग करना है, 5:45 या 5:15 तक इस फरिश्ता स्थिति के द्वारा विश्व की अनेक आत्माओं की सेवा हमें करना है, शांति शक्ति का दान देना है, नमा शाम के समय भी ये अभ्यास करते रहना है। तो इस अभ्यास को बढ़ाते रहने से भी हमारी फरिश्ता स्थिति निखरती जाती है। तो कलप कलप हमने ऐसी स्थिति को प्राप्त किया है, कोई हम नई बात नहीं करने जा रहे हैं, केवल उस अभ्यास को दोहरा रहे हैं। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, अभी कुछ भी हो अपने संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को इमर्ज करो। क्यों बाबा ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि बहुत ही जल्द ही निकट में हमें बेहद की सेवा करने का चांस बाबा देना चाहते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, दुनिया में बहुत दुख बढ़ते जाएंगे, लोग ढूंढ ढूंढ कर बाबा के बच्चों के पास आएंगे और हमें अपने फरिश्ता स्वरूप के द्वारा अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान देना होगा। और जितनी हम सेवा करते जाएंगे, अनेक आत्माओं की दुआएं हमें मिलती जाएगी। दूसरी बात, जब इस धरती पर विनाश के बादल मंडराएंगे, उस समय जैसे पंछियों का झुंड आसमान में उड़ता है, ऐसे फरिश्ते आसमान में उड़ते रहेंगे और अनेक मनुष्यात्माओं को शांति शक्ति का दान देते रहेंगे। ऐसी सेवा फरिश्ता स्वरूप के द्वारा हमें बहुत करनी होगी, इसलिए उसका अभ्यास अभी से करना है। तो धीरे धीरे क्या होता है, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करते 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 संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को हम प्राप्त करते जाते हैं। आत्मा की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करने की क्षमता बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, फिर 100% आत्मा की लाइट जब रिफ्लेक्ट हम करने की क्षमता को प्राप्त करते हैं, माना संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को अनुभव करते हैं। आप 18 जनवरी के दिन मधुबन में अगर आते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं कि फरिश्तों की दुनिया ही इस धरती पर आ चुकी है। मधुबन मधुबन नहीं लगता है, ऐसा लगता है सूक्ष्म वतन है यहाँ। सब बाबा के बच्चे एकदम रमा बाबा के स्मृति दिवस के कारण बाबा के प्यार में खोए रहते हैं, एकदम मौन व्रत धारण करते हैं, चलते फिरते चार धाम करते हैं, ऐसा लगता है ये चलते फिरते फरिश्ते ही फरिश्ते। इतना सुंदर अनुभव होता है, बात मत पूछो। और उस दिन विशेष एक्स्ट्रा शिव बाबा की सरकार भी हमें मिलती है, उसका विशेष लाभ हमें मिलता है, जिसके कारण ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति नेचुरल होती है। अमेठी 7 में मधुबन निवासी बाप दादा से मिल रहे थे मेडिटेशन हॉल में, तो बाबा ने कहा कि मधुबन में आप क्या सेवा करते हो? बहुत साधारण सेवा करते हो, भोजन बनाना है, कपड़े धोना है, सफाई करना है, बिल्कुल साधारण कर्म कर रहे हैं। कर्म भले साधारण करें, लेकिन स्थिति आपकी असाधारण हो। कोई भी खिड़की से आपको देखें, दरवाजे से आपको देखें, तो ऐसा अनुभव करे ये होनहार देवता है, ये तो अलौकिक फरिश्ते हैं। क्योंकि कर्म करते समय जो हमारी आंतरिक स्थिति होती है और उस समय हमें कोई देखता है तो हमारी आंतरिक स्थिति का रिफ्लेक्शन उनके मानस पटल पर होता है और उस स्थिति का साक्षात्कार उनको होता है। इसलिए कर्म भले हम साधारण करें लेकिन स्थिति हमारी असाधारण हो, इस पर विशेष हमें ध्यान देना है और फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। अभी आप देखो अपने घर में है, कर्म क्षेत्र पर है, ऑफिस में है, कहां पर भी है, अगर ऐसी फरिश्ता स्थिति को आपको निखारना है तो तीन प्रयोग बार बार आपको करते जाना है अपने कर्म क्षेत्र पर। पहला प्रयोग, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने इस स्थूल देह को धारण किया है और स्थूल जमीन पर चल रहा हूं, आपका अनुभव बिल्कुल साधारण होगा। उसके बाद आपको अपनी स्मृति के स्विच को थोड़ा घुमाना है, श्रेष्ठ स्मृति को मेंटेन करना है और दूसरा प्रयोग करना है, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण की है, लाइट की ड्रेस धारण की है और लाइट के जमीन पर चल रहा हूँ। बहुत ही सुंदर अनुभूति आपको होगी, देखने वाले आपको फरिश्ता ही अनुभव करेंगे। तीसरा प्रयोग, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने रुई की ड्रेस धारण कर ली है और रुई की जमीन पर चल रहा हूँ, ऐसी अनुभूति आपको करना है। बहुत हल्के फुल्के आप अनुभव करते जाएंगे और आपकी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी। बोलो ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना चाहते हैं, बोलो अनुभव करना चाहते हैं, अभी अनुभव करना चाहते हैं, बोलो हाँ या ना, थोड़ी ठंडी आवाज आती है। देखो बाबा इतना उच्च कोटि का ज्ञान हमें दे रहे हैं, ज्ञान के सागर, लेकिन उस उच्च कोटि के ज्ञान की ब्यूटी क्या है, ऐसे श्रेष्ठ अलौकिक अनुभव करना और कराना। इसलिए बाबा ने कहा है अभी अनुभव की अथॉरिटी बनो, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी वाले आने वाले हलचल के समय भी अचल स्थिति बनाने में सफल होंगे। तो ऐसी अनुभूति करने चाहते हैं सभी? हाँ जी, तो सब खड़े हो जाएंगे, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और थोड़ा सा ऐसे अपने स्थान पर ऐसे थोड़ा सा झूमेंगे, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, ऐसा लगे नहीं कि आप झूम रहे, बहुत मस्ती से। बाबा कहते मैंने आपको बहुत झूले दिए हैं, वो झूले में झूलते हो क्योंकि हम बहुत लाडले बच्चे हैं। चलो हम सभी बहुत सुंदर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने जा रहे हैं। ओम शांति, झूलते हो, मोस निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह, मेरा यह फरिश्ता स्वरूप तीन बातों से संपन्न है। ईश्वरीय नशे से संपन्न है। ईश्वरीय नशे की झलक मेरे चेहरे पर छाई हुई है। मेरा यह फलिस्ता स्वरूप ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न है। मेरा यह फरिश्ता स्वरूप ईश्वरीय गुणों से संपन्न है। दिव्य गुणों के श्रृंगार से मेरा चेहरा सजा हुआ है। फरिश्ते ने बहुत सुंदर दिव्य और भव्य पवित्रता का ताज भी पहना हुआ है। मेरी बुद्धि रूपी तार डायरेक्ट परम धाम में ज्ञान सूर्य शिव पिता से जुटी हुई है। अभी अभी यह मेरा फरिश्ता स्वरूप इस हॉल से बाहर निकलकर विश्व के ग्लोब पर हनुमान की तरह एरोप्लेन की तरह उड़ रहा है। मैं फरिश्ता विश्व के ग्लोब पर भ्रमण कर रहा हूं। एक तरफ परम धाम से ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की सकाश मौस फरिश्ते पर पड़ रही है और दूसरे तरफ मेरे माध्यम से शक्तियों की किरणें विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर पड़ रही है। अनेक आत्माएं राहत अनुभव कर रही है और रिटर्न में मुझे दिल की दुआएं भी दे रहे हैं। मैं फरिश्ता विश्व के ग्लोब पर एक खंड के बाद दूसरे खंड के ऊपर ऐसे पांचों खंडों पर भ्रमण करते करते बाप दादा के समक्ष विराजमान हो चुका हूं। ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में शिव बाबा भी विराजमान है। बाप दादा मुझ फरिश्ते को नजर से निहार कर रहे हैं। अ असीम प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। हे वरिष्ठा, बाबा की दृष्टि का असीम आनंद ले रहा हूं। दृष्टि का आनंद लेते लेते मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। कितनी सुंदर अनुभूति है यह। बाबा की दृष्टि आनंद लेते हुए मैं फरिश्ता पुनः इस हॉल में वापिस आकर अपने स्थान पर विराजमान हो चुका हूं। ओहो, मेरे बाजू में ब्रह्मा बाबा फरिश्तों के राजा ब्रह्मा बाबा विराजमान है। बाबा के हाथ में मेरा हाथ है। बाबा के साथ में मेरा साथ है। बाबा के संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप से मुझे प्रकाश मिल रही है, जिससे मैं अपनी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति सहज कर रहा हूं। मुझे पर्सनली पालना दे रहे हैं। इस फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने उच्च कुल की ब्राह्मण छोटी की ड्रेस धारण कर ली है। सारे संसार को भाग्य बांटने वाले भगवान ने मुझे अपना लिया है, अपनी शीतल गोद में बिठा दिया है। संसार जिसके गुणगान कर रहा है वह भगवान हर रोज मुरली में मेरे भाग्य के गीत गाते रहते हैं। वारे में वहां मेरे बाबा वहां मेरा मेरा भाग्य बुलंदियों पर है। भगवान ने मेरे भाग्य का निर्माण करने के लिए रुद्र ज्ञान युग की स्थापना की है। उस रुद्र ज्ञान महायज्ञ में मैं तन से मन से धन से स्वाहा होकर अपने भाग्य का सीधा चमका रहा हूं। इस
बेहद के ड्रामा में मैं आत्मा हीरो पार्टधारी हूँ, जीरो हूँ लेकिन हीरो पार्टधारी हूँ। ड्रामा के डायरेक्टर के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्टर से मुझे हर रोज श्रीमत के रूप में डायरेक्शन मिलता रहता है, जिससे मेरा जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता जा रहा है। वरदानों के सागर शिव बाबा डायरेक्ट परम धाम से हम सभी महान ब्राह्मण आत्माओं पर गोल्डन पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। स्नेह के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। मैं पद्म भाग्यशाली आत्मा हूँ।